ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में बच्चों के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिशु अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच कराने के निर्देश दिए। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर कल कुल 58.3% मतदान हुआ। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल पर रोक लगाने के निर्देश दिए और देशभर में भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासियों को आज भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में कल देर रात बच्चों के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हादसे में 12 शिशुओं को बचा लिया गया। अभी एक शिशु आईसीयू में है और 5 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा है कि उसे इस घटना के बारे में रात 11:30 बजे जानकारी मिली थी, जिसके बाद आग बुझाने वाली 16 गाड़ियों को घटनास्थल के लिए तत्काल रवाना किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के निदेशक और एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। शाहदरा जिला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी जानकारी में आया है कि अस्पताल का अनापत्ति पत्र एनओसी 31 मार्च को ही खत्म हो गया था। अस्पताल को 5 बेड तक की ही अनुमति थी, लेकिन अस्पताल में 10 से ज्यादा बेड लगाए हुए थे।
उनके अदर वायोलेशन भी थे कि उनका फायर एग्जिट का सिस्टम नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें नहीं थे। तो इन सब को देखते हुए हमने इसमें धारा 304 और 308 आईपीसी ऐड करी है और हमने डॉक्टर जो उसके संचालक हैं डॉक्टर नवीन खींची, जो वेस्ट दिल्ली में उनका एड्रेस है घर का, और वो उनको हमने अप्रीहेंड किया इसमें।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से घटना की जांच कराने का निर्देश दिया है। श्री सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से अस्पताल में सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को हादसे के बारे में पूर्ण जानकारी देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रूपये दिये जायेंगे। अस्पताल में आग लगने और नवजात शिशुओं की दर्दनाक मृत्यु पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि अस्पताल में हुए अग्निकांड में बच्चों की मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। एक सोशल मीडिया संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान शोक संतप्त माता पिता और रिश्तेदारों को यह सदमा सहने की शक्ति दे। उन्होंने घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वे अस्पताल में नवजात बच्चों की मृत्यु पर बेहद व्यथित हैं। उन्होंने दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि बच्चों के अस्पताल में आग की यह घटना दुखद है। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर कल कुल 58.3% मतदान हुआ। सबसे अधिक 62.87% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ। सबसे कम 55.15% मतदान दक्षिणी दिल्ली सीट पर हुआ। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 58.37%, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर 58.28%, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर 57.6% और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 55.25% मतदान हुआ। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतों की गणना 4 जून को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और फरीदाबाद में कल हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। जिला फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया है कि चुनाव पर्यवेक्षक अक्षय कुमार सिंह और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम, वीवीपैट और अन्य मतदान सामग्री को स्ट्रांग रूम में सील किया गया है। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। लोकसभा चुनाव समाप्त होने और नतीजों की घोषणा में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में संसद में नवनिर्वाचित सांसदों के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। लोकसभा सचिवालय व्यापक व्यवस्था कर रहा है और इसके लिए अधिकारियों की विशेष टीमें गठित की गई हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में बच्चों के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिशु अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच कराने के निर्देश दिए। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर कल कुल 58.3% मतदान हुआ। सरकार ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल पर रोक लगाने के निर्देश दिए और देशभर में भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासियों को आज भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार भारतीय लैंडलाइन नंबरों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल इस वर्ष 30 जून तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। जनरल पांडे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्हें 30 अप्रैल 2022 को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में कमीशन मिला था। सेनाध्यक्ष का पद संभालने से पहले वे उप सेनाध्यक्ष थे। देशभर में भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासियों को आज भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहते हुए 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा शहर के लोगों को भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है। कल का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भीषण गर्मी के कारण पहली से कक्षा आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 31 मई तक बंद रहेंगे। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया है कि मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में रात 9:30 बजे से वर्षा जल संचयन विषय पर चर्चा करेगा। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और राष्ट्रीय जल मिशन की निदेशक अर्चना वर्मा श्रोताओं के प्रश्न के उत्तर देंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता 9:30 बजे विशेषज्ञों से वर्षा जल संचयन की आवश्यकता और महत्व पर सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 92890-940-44 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। श्रोता हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी इस प्रसारण को सुन सकते हैं। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनकर इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने फेस्टिवल का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। किसी भारतीय महिला निर्देशक की यह पहली फिल्म है जो 30 वर्षों में किसी प्रमुख प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शित की गई है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट उनकी पहली फीचर फिल्म है। यह फिल्म इंडो फ्रेंच प्रोडक्शन है, जिसमें प्रभा नाम की एक नर्स की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को 77वें कान फिल्म महोत्सव में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की पूर्व छात्र पायल कपाड़िया की प्रतिभा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है और वह भारत की समृद्ध संस्कृति और नई दिशा को प्रदान करती हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से केवल उनकी विशेष प्रतिभा का ही प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि इससे नई पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं को प्रेरणा भी मिलती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में बच्चों के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शिशु अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच कराने के निर्देश दिए। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर कल कुल 58.3% मतदान हुआ। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल पर रोक लगाने के निर्देश दिए और देशभर में भीषण गर्मी के बीच दिल्लीवासियों को आज भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।